ओम शांति। हम सभी आदरणीय बिमला दीदी जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपकी क्लास का विषय है स्थिति को अचल अडोल कैसे बनाएं। परिस्थितियां जब आती हैं तो सबसे पहले स्थिति ही बिगड़ती है, तो आवश्यक है कि परिस्थितियों के बीच अपनी स्थिति को अचल अडोल कैसे बनाएं। इस पर बहुत सुंदर क्लास कराएंगी आदरणीय विमला दीदी जी, इंदौर जोन के जबलपुर शहर कटंगा से, जहां की आप सेवा केंद्र संचालिका हैं। आप इंदौर जोन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, मीडिया विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने इंदौर जोन के कई सेवा केंद्रों का शुभारंभ करने का मित्र बनी। सेवा की नई नई प्लानिंग करना, क्लासेस कराना, भट्टी कराना, उसमें आपकी विशेष रुचि रही है। आप एक कुशल वक्ता हैं। विगत 47 वर्ष से आप यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं और अभी आप सभी की बहुत सुंदर क्लास कराएंगी आदरणीय विमला दीदी जी।
ओम शांति। सभी की आवाज तो नहीं आई ओम शांति वाली? ओम शांति। अभी हम एक गीत सुन रहे थे। ये किनका गीत है? लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये किनके दिल का गीत है? जिनकी स्थिति निश्चय बुद्धि और अवस्था अचल अडोल है, उनके ये दिल का गीत। तो बाबा ने इस धरती पर आकर विश्व परिवर्तन का एक बहुत महान कार्य शुरू किया और इस महान कार्य में अपना सहयोगी और साथी हम बच्चों को बनाया। जो भगवान के कार्य में निमित्त बने, उनके इस कार्य में साथी बने, सहयोगी बने, ये भी जैसे परम सौभाग्य की बात। तो हम सब हो गए बहुत बहुत सौभाग्यशाली बच्चे कि भगवान ने हमको इस लायक समझा और अपना साथी बनाया। शिव बाबा ने एक सुंदर विश्व बनाने के लिए ही, इस लक्ष्य को रख करके ही ये यज्ञ रचा है। तो इस यज्ञ के प्रति, यज्ञ के कार्य के प्रति बाबा की कुछ हमसे आशाएं भी हैं और साथ में हमें जिम्मेवारी भी दी है। जिम्मेवारियों के लिए हम लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी निकलेगी। हमारी जिम्मेवारी ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उन सब जिम्मेवारियों में सबसे पहली जिम्मेवारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, या कहें सबसे बड़ी जिम्मेवारी कौन सी? सबसे पहले हमारी इस यज्ञ के प्रति जिम्मेवारी होती है अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना करके रखना। कभी कभी नहीं, सदैव अपनी अवस्था को सदैव बहुत अच्छी बना करके रखना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है। यदि इस जिम्मेवारी को हमने अच्छी तरह से निर्वाह कर लिया तो बाकी सारी जिम्मेवारी अपने आप ही बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। अब हमारी स्थिति को, अवस्था को अच्छी बनाकर रखने में, सुंदर बनाकर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे योग की। योग बल भर करके ही हम अपनी अवस्था को अचल और अडोल बना सकते हैं। योग ही हमारे परिवर्तन का आधार है। योग अग्नि ही हमारे पुराने संस्कारों को दग्ध करने वाली है। कहने में तो ये ढाई अक्षर है, योग ये ढाई अक्षर का है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से इसका उपयोग करें, इसका प्रयोग करें, तो 2500 साल की हमें सर्वांगीण सुख शांति और खुशी की प्राप्ति हो जाती है। योग ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जिसे सारे खजानों के द्वार और सब शक्तियों के भंडार खुल जाते हैं। आज का समय, हम जो समय देख रहे हैं, खराब ही नहीं, खतरनाक भी बहुत बन गया है और दिनों दिन और ही खराब होते ही जाना है। और ऐसे खराब और खतरनाक समय में योग बल ही हमारी सेफ्टी का साधन बनेगा। योग ही हर परिस्थिति में, हर प्रकार के वातावरण में हमारी मदद करेगा। इसलिए बाबा भी समय की समीपता को देखते हुए हम बच्चों को ये इशारा देते हैं कि अब बच्चों की स्थिति अचल अडोल और योग निरंतर हो जाना चाहिए। ऐसा समय तो हम भी महसूस कर रहे हैं ना, ये बाबा की हमसे आशाएं हैं। बच्चों की स्थिति कैसी, अचल अडोल, क्योंकि परिस्थिति तो बहुत हिलाने वाली आएगी और योग तोड़ने वाली भी बातें आएंगी। बाबा चाहते हैं, बाबा का इशारा हमको मिलता है कि बच्चों का योग निरंतर और स्थिति अचल अडोल हो ही जानी चाहिए। और हमारी स्थिति हमेशा एक रस रहे, किसी भी बात में, कोई भी परिस्थिति में हिले डुले नहीं, ये तो हम भी चाहते, दिल से चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमें अवस्था कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। लेकिन अवस्था को हम एक रस बना के कैसे रखें? यदि हम कुछ बातों का अच्छी तरह से गौर करें या उनको हमेशा ध्यान में रखेंगे, उन बातों को सदैव ध्यान में रखेंगे जो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूं, तो मुझे विश्वास है कि स्थिति निश्चित रूप से आपकी एक रस हो ही जाएगी। ये अप डाउन वाली स्थिति हमारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ज्ञान की आती है। ज्ञान हम सुने तो सही और सुनते ही हैं, मुरली से सभी को बहुत प्यार है, रोज सुनेंगे। मुरली की क्लास में एब्सेंट नहीं होगी हमारी। प्रश्न है ज्ञान सुनने में तो हम एक्यूरेट हैं, नियमित हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में हमें इतने सुंदर सुंदर ज्ञान के पॉइंट्स दी है, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की शिक्षाएं सीख हमें रोज मिलती है, हर परिस्थिति के लिए, हर समय के लिए, हर प्रकार के वातावरण के लिए, हर प्रकार की माया का सामना करने, उस पर जीत प्राप्त करने के लिए सब बातें हमें मुरली में मिलती है। जब बातें सामने आती है, परिस्थिति आती है, उस समय हम उस ज्ञान के पॉइंट का रूप नहीं बन पाते हैं, उस समय ज्ञान की वो सीख हमें भूल जाती है कि बाबा ने ऐसी परिस्थिति के लिए ऐसी बात बताई है ना। इसलिए गीता में बहुत अच्छी पॉइंट लिखी है, ये बात लिखी होगी आपने, पढ़ी भी होगी। हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। ऐसे तो बाबा को योगी प्यारा लगता है, योगी प्रभु को प्यारा है ना। योगी के लिए ऐसा नहीं कि वो प्रिय नहीं है, लेकिन हमारे योग का आधार तो ज्ञान है ना। योग, यदि आप केवल योग ही योग लगाएं और मुरली बिल्कुल नहीं सुने, न ज्ञान का मनन चिंतन करें, न ज्ञान की समझ हम अपने पास में रखें, कुछ दिनों बाद योग आपका टूट जाएगा, योग का रस सूख जाएगा। क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है ना, तो हमारी स्थिति को सुंदर बनाने में ज्ञान स्वरूप बनना हर समय उस परिस्थिति के समय बाबा की कही हुई बातों को याद कर लेना। बाबा ने ऐसा भी तो कहा है, बाबा ने ये भी तो सुनाया है ना, बच्चे तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब कहाँ जाएगा। कई बार होती है ना बातें हमारे सामने आती है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमने किसी का कुछ भी अहित नहीं किया है, किसी का नुकसान नहीं किया है, और वो हमारा नुकसान कर रहे हैं। बातें आती है, थोड़ा सा मन बुद्धि हिल भी जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बाबा देख रहा है कि मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है, फिर मेरा ये हिसाब किताब कैसा। अगर ज्ञान स्वरूप हम हैं तो बाबा के ज्ञान की बातें, जो कर्मों की गुह्य गति की बातें बाबा सुनाते हैं, वो उसी समय मेरी बुद्धि को टच होगी। बाबा ने कर्म दर्शन भी तो हमको बताया है, कर्म दर्शन को भी तो हमने समझ लिया है, कर्मों का हिसाब किताब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस जन्म में मैंने कुछ नहीं बनाया अपना विकर्म, लेकिन पिछले कई जन्म के तो हैं, कई जन्म के तो हिसाब किताब चले आ रहे हैं, वो कर्ज चुके नहीं तो अब वो कर्जा मेरे सामने आ गया है, इस रूप में आया है। चलो अच्छा, आज ऐसी परिस्थिति हुई है, मेरा एक के साथ तो मेरा कर्जा खत्म। वह कब होगा खत्म? जब आप स्थिति बहुत अच्छी रखेंगे, अंदर जरा भी संकल्पों की उथल पुथल नहीं होगी, संकल्पों में निगेटिविटी नहीं आएगी, संकल्पों में भी शुभ भावना ही रहेगी, और ये कर्मों की बात याद है, कर्मों के हिसाब किताब की बात याद है, आपकी स्थिति एक रस रहेगी। अरे मेरा ही तो हिसाब किताब, ये कर्जा तो मैंने ही लिया था, मेरे सामने नहीं आएगा तो किसके सामने जाएगा, ये मैंने लिया है तो मेरे सामने आएगा। आ गया वो चुक तू। कई कर्जे होते हैं ना, कर्जों की लिस्ट भी होती है कईयों की, किराने वाले का कर्जा है, दूध वाले का कर्जा है, कपड़े कहाँ से खरीदे उसका भी कर्जा है, मकान का किराए देने वाला भी कर्जा, बहुत सारे कर्जे हैं। आज एक कर्जा मेरा चुक गया उस समय से। ऐसे कई आत्माओं के साथ हमारे कर्जे होते हैं, पूर्व जन्म के, उसके भी पूर्व जन्म के, हम एक ही जन्म में कितने लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, जाने अनजाने हमारा उनके साथ हिसाब किताब बन जाता है। ज्ञान तो अभी आया है, ज्ञान तो अभी इस जन्म में हमको अभी मिला, कुछ साल पहले मिला है। कर्म दर्शन को अभी हमने समझा, इसके पहले थोड़ी समझा था। जो मन में आया वो किया, जैसा इच्छा हुई वैसा किया, किसी के साथ कुछ भी किया, बन गया हिसाब किताब। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति अर्थात हमेशा हर परिस्थिति के लिए बाबा की दी हुई शिक्षा उसी समय मुझे याद आ जाए और मैं उस शिक्षा के आधार पर अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दूं। तो स्थिति को अचल, अडोल और एक रस बनाने के लिए, स्थिति को सुंदर बना के रखने के लिए, क्योंकि संगम पे भूलो नहीं, सबसे वैल्यूबल चीज, सबसे कीमती चीज मेरी अपनी अवस्था है। और इतनी वैल्यूबल चीज का मुझे कभी भी पाई पैसे में गंवाना नहीं है, छोटी छोटी बातों में खत्म नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो पहली पॉइंट ज्ञान, ज्ञान माना जो बाबा की मुरली में सारा ज्ञान आ जाता है, सभी विषय का ज्ञान आ जाता है, वो तो ज्ञान का सागर है, कितना ढेर हमको ज्ञान दिया है और आज भी दे रहे हैं, बस वो ज्ञान को समय पर यूज करना, उसी समय वो ज्ञान के पॉइंट को मैं व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने बोल में लाऊं, ध्यान रखने की ये बात है। दूसरी बात, हमारी स्थिति को बहुत अच्छी बना के रखने वाला जो गुण है वो है संतुष्टता। कहते भी है ना, संतोषी सदा सुखी। सुख में स्थिति बनाने में, सदैव सुख में स्थिति मेरी बनी रहे, सदैव मेरी शांतमय स्थिति बनी रहे, उसमें इस गुण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इच्छाएं तो, जो इच्छाएं बहुत होती वो हमको असंतुष्ट करती है, जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती हम असंतुष्ट हो जाते हैं, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये मेरा वो नहीं पूरा हुआ। तो जो इच्छाएं बहुत जागृत होती है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है हमारे अंदर असंतोष आ जाता है। तो बाबा ने तो वैसे भी हमको इच्छा मात्रम अविद्या बनाया ही है, और ज्ञान के आधार पर हमने ये सब बातों को समझ लिया है कि अब हमारे यहां से जाने का समय आ गया है, अब जाना है हमको गुणों से भरपूर होकर, आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर होके जाना है, संपूर्ण स्थिति बनाकर जाना है, सर्वगुण संपन्न बनकर के जाना है। अगर ये बात हमेशा याद रहे तो व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। मान अपमान की बात आती है, कोई अपमान कर देता है, आपको मान नहीं मिलता है, वहां हमारी असंतुष्टता होती है। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये हमारी संतुष्टता को खत्म कर देती। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, ये इच्छाएं भी हमारी संतुष्टता को खा जाती है। इसलिए और यदि जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जैसा मुझे मिल रहा है, उसी में मुझे संतुष्ट रहना, क्योंकि जो मिल रहा, जितना मिल रहा, वो मुझे मेरे अपने हिसाब किताब से मिल रहा है। मेरे हिसाब किताब में इतना ही मिलना है, इससे ज्यादा मिलना है ही नहीं। दूसरे को देखते हैं ना हम, उसका खाता है भरा हुआ, पूर्व जन्म का बहुत श्रेष्ठ कर्मों का खाता है, उसको बहुत कुछ बिना प्रयास के, बिना मेहनत के मिल रहा है। आपको मेहनत से भी नहीं मिल रहा है, वही कर्म दर्शन वाली बात आ गई। हमेशा इस बात को याद रखो। हाँ, आज हम जो कर रहे हैं, आज हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन है, अपने कर्मों के ऊपर पूरा ध्यान है, सारे कर्म में एक्यूरेट, तो आज का किया हुआ आपको मिलने वाला है ना, वो कहां जाएगा? वो जमा है, वो जमा है, वो व्यर्थ नहीं गया, गंवाया, व्यर्थ नहीं गया। कई कदम इतना अच्छा कर रहे हैं, इसका फल तो सामने है, तो फल भी आराम से आएगा ना, धीरे से अंकुरित तो होगा। आप जो बीज बो रहे हैं कर्म का, उसका फल तो, फलों की भी तो सबकी आयु अलग अलग होती है ना, सभी फल एक ही समय पर थोड़ी आ जाते हैं। वो तो आप सभी जानते हैं, कोई फल 3 महीने में आ जाता है, कोई फल 6 महीने में आता है, कोई फल को आने में 1 साल भी लग जाता है, किसी फल को आने में 5 साल भी लगते हैं, किसी को 10 साल भी लगते हैं, किसी को 15 साल भी लगते हैं। पर यदि बीज बोया है और झाड़ बढ़ रहा है उसका, तो उसमें फल अवश्य आएगा, पर अपने टाइम पर आएगा। आज आप अच्छा कर रहे हैं, फल बहुत सुंदर आने वाला है उसका, बहुत सुंदर, बहुत मीठा, बहुत अच्छा फल, लेकिन थोड़ा समय लेकर आएगा। और हम यही धैर्यता खो देते हैं, हमारी धैर्यता जवाब दे देती है। इसलिए संतुष्टता के साथ एक धैर्यता गुण, उसको भी धारण करके रखना है। धीरज धर मनवा, आज ही मुरली में था ना शायद यही वाला गीत, सुख के दिन आने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं, वह पहला जो पुराना कर्जा है वह तो चुक जाए। 42 जन्मों का कर्जा तो बहुत ज्यादा है ना, चलो द्वापर का ना मानो ज्यादा, पर कलयुग का तो बहुत ज्यादा हिसाब किताब है हमारा, पूरे कलयुग का। इसलिए हमेशा इस गुण को धारण करने में, हमेशा इस गुण को अपने पास कायम रखने में, कौन सा गुण? संतुष्टता। सदा सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी दुख और अशांति आपके पास नहीं आएगी, संतोषी। अरे भाई, इसको जैसा करो वैसा संतोषी है ये, कभी न दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता है ये, दूसरों से तुलना नहीं, न दूसरों को देखकर सो कभी ईर्ष्या होती है नहीं, ये बहुत संतोषी जीव है, ऐसा भी इनको टाइटल मिलता है। और वो संतोष दूसरों को भी, हमारे ये गुण कितना अच्छा लग रहा है, तो उनकी दुआएं तो खैर हमें मिली रही है भाई, जो यदि हमें अच्छा अच्छा कहते तो दुआएं ही तो है ये, हमारे ये संतुष्ट रहना उनको सबको कितना अच्छा लग रहा है। संगठन में हम रहते यदि संतुष्ट रहते हैं, तो बड़े से लेकर छोटे तक सभी को प्यारे लगते हैं। तो एक तो संतुष्ट रहने से दुआएं भी मिलती है, और दूसरा हमारी सुख शांति हमारे पास कायम रहती, जो सबसे मूल्यवान चीज है, सुख और शांति। लोगों पर यही तो नहीं, सब कितने धन दौलत सबके पास, पर शांति नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है, खुशी नहीं है। ये संतोषी सदैव सुख शांति से और खुशी से जीता है, सबको प्यारा लगता है, प्रभु को भी वो प्यारा लगता है। और हमारी संस्था में तो ये संतुष्टता के लिए सर्टिफिकेट की बात आती है, किसी और गुण के साथ सर्टिफिकेट नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक संतुष्टता के, संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें लेना है, स्वयं से संतुष्ट, दूसरे भी मेरे से संतुष्ट और बाबा भी मेरे से संतुष्ट, ये तीनों सर्टिफिकेट हमें लेना है ये गुण का। तो इसलिए हमारी इस स्थिति को एक रस बनाने में, अचल अडोल बनाने में ये गुण का बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवन में यदि एक तो ज्ञान को हमेशा याद रखो, बाबा ने इस समय के लिए क्या कहा है, इस समय के लिए क्या कहा, इस समय के लिए क्या कहा है, हर समय के लिए हमको ज्ञान की पॉइंट मिले, उसको यूज करो। दूसरा, हमेशा संतुष्ट रहने का एक स्वभाव बना लो, अपना संस्कार बना लो, मुझे असंतुष्ट तो कभी होना ही नहीं है। और जब ईर्ष्या द्वेष की भावना थोड़ी सी अंदर होती है ना, तो वो व्यक्ति बार बार असंतुष्ट, दूसरों को दे देकर असंतुष्ट होता है ना, उसको मिला मेरे को नहीं मिला, कोई बात नहीं मिला तो नहीं सही, भगवान तो मिला मुझे, हाँ ईश्वर की दुआएं तो मुझे मिली, भगवान का आशीर्वाद तो मुझे मिला क्योंकि मैं संतोषी हूं। तीसरा, त्याग वृत्ति। संतुष्टता का गुण बहुत अच्छा है, हमको सर्टिफिकेट लेना है, इस यूनिवर्सिटी में यह सर्टिफिकेट लेना है, संगम युग का सर्टिफिकेट तो यह है, भविष्य का सर्टिफिकेट तो देवपद है, लेकिन संतुष्टता का आधार क्या? संतोषी हमेशा संतुष्ट कब रहेगा? जब उसके अंदर त्याग वृत्ति है, त्याग की भावना है, चलो छोड़ो ना, उसको मिले अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए, त्याग करो। कभी कभी होता है ना, भाई सबको चांस दो, आप जाओ हम यही रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे, आप सब जाओ, आप संतुष्ट हो। कभी कभी संगठन में ऐसी बातें भी हो जाती है, उसको ज्यादा मिले हाँ उसको भले ज्यादा दे दो, हम तो थोड़े में भी ठीक रहेंगे। तो ये त्याग वृत्ति, त्याग की भावना जिसमें होगी वो सदैव संतुष्ट रहेगा। त्याग की भावना जब हम त्याग नहीं कर सकते हैं, मान शान सबका त्याग, जब त्याग नहीं कर सकते बस वही असंतुष्टता होती है। तो त्याग करने की भावना उसमें भी मैं आगे, पहले मैं, जैसे कही होता है चांस पहले मेरे को मिले, ऐसे संतुष्ट आत्मा ने त्याग पहले मैं करूं, बड़ा त्याग ये कोई नहीं कर सकता, नहीं पहले हम करेंगे, इतनी बड़ी सेवा, कठिन सेवा कोई नहीं करने को तैयार, हम करेंगे, हम करेंगे, ये त्याग में भी पहले मैं, वही संतुष्ट रहेगा हमेशा। और वैसे भी जो त्यागी होता है हर समय दूसरों के लिए त्याग करता है, दूसरों को अवसर देने के लिए त्याग करता है, दूसरों की सेवा के लिए त्याग करता है, वो सबको प्रिय तो लगता ही है, सबसे उसको सम्मान तो मिलता है। दुनियावी रीति में भी आप देखो जो त्यागी तपस्वी होते हैं उनको सबसे सम्मान मिलता है। अब गेरू वस्त्र वाला कहीं जाएगा लोग हाथ जरूर जोड़ेंगे, पैर जरूर पड़ेंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि समझते ना इन्होंने मोह माया का त्याग किया है, सुखों का त्याग किया है। तो ये भी है कि जो त्याग करता है वो सम्माननीय होता है, उसको मान मिलता है। खैर हमको मान मिले इसलिए हम त्याग करें ये भावना तो अंदर रखनी नहीं है, पर एक नेचुरल यदि आप त्यागी हैं, आपके अंदर भावना ही त्याग की है, अब दूसरों के लिए जी रहे हैं, जैसे बाबा के धाम को तो दूसरों के लिए त्याग करना, अपना तो सुख सोचना ही नहीं है। तो संगठन में भी सभी को प्रिय भी लगता है, सम्मान भी पाता है। एक बार एक सेठ था गांव में, गांव का सेठ था, वो उसे प्रकृति कंजूस की बहुत थी। कंजूस की माना वो अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करता था, यहां तक कि कपड़े भी बहुत पुराने, कहीं कहीं से फटे, मेले कुचले ऐसे ही पहन के रखता था। कोई कह नहीं सकता उसको देख करके कि ये एक इतना बड़ा सेठ, इतना धनवान सेठ भी है, पर बहुत पैसा है इसके पास, कोई उसको देखकर कह नहीं सकता, उसकी प्रकृति ऐसी। पर हाँ, उसका एक गुण बहुत अच्छा था, एक गुण उसका बहुत अच्छा था, उसको सत्संग बहुत अच्छा लगता था। गांव में जहां भी सत्संग होता था वो जरूर समय निकाल करके, कभी कभी तो थोड़े टाइम के लिए जा पाता तो पीछे बैठता था, पर जाता जरूर था, सत्संग से उसको प्रेम था। एक बार गांव में सत्संग हो रहा था, वो सत्संग कम से कम 10-15 दिन तक चला था, रोज जाता था, देर भी हो जाती पीछे जूतों के पास में बैठ जाता, जूते लोग उतारते तो उसके पास में बैठ जाता था, जगह नहीं मिलती थी तो वहीं बैठ जाता था, पर आता रोज था। जब सत्संग पूरा हुआ तो जो संत आए थे सत्संग कराने, रोज प्रवचन सुनाने के लिए, उन्होंने पूरी सभा को कहा कि देखो भाई, आज सत्संग पूरा हो रहा है और कल भंडारा है। भंडारा माना सभी का, जितने भी जो भी आएंगे सबको यहां भोजन मिलेगा। तो उस भंडारे के निमित्त जिसको जो भी अपना देना हो सहयोग, वो आप दे सकते हैं। तो कल आप जो भी लाना हो भंडारे के लिए, वो आप कल आखिरी प्रवचन का दिन है, परसों भंडारा है, कल आप जो भी जिसको लाना हो वो ला करके भंडारे के लिए दे सकते हैं, ऐसा संत ने पूरे उसमें बताया। अगले दिन वही जो सेठ इतनी बड़ी पोटली लेके आया, काफी धन लेके आया, और जैसे सब लाइन से आते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, कोई गेहूं की बोरी लाया, कोई चावल की बोरी लाए, ऐसे सब रखते जा रहे थे, कोई रुपए पैसे भी लाए, वो भी लास्ट में आया, उसने भी इतनी बड़ी पोटली संत के सामने रख दी। तो संत ने कहा, आओ आओ सेठ जी, बैठो बैठो, यहां बैठो बैठो। तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि दोस्तों मैं पीछे बैठता था, कभी ये भी किसी ने बोला कि आप आगे आके बैठो, और आज ये गुरु जी बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास में बैठो। तो उसको संकल्प आया, ऐसा तो नहीं कि आज मैंने धन दिया है ये धन का मुझे सम्मान मिल रहा है। तो उसने बोल दिया कि महात्मा जी, क्या ये मेरे धन का मुझे सम्मान मिल रहा है? महात्मा जी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे त्याग का सम्मान है, यही धन तुम्हारे पास पहले भी था, पर तुम्हारे पास रखा हुआ था, आज आपने त्याग किया, तो ये त्याग का सम्मान है, धन का सम्मान है, धन का जो त्याग किया आपने, त्याग का सम्मान है। तो कहने का भाव यही कि त्याग एक ऐसा गुण है, जो त्यागी होता है वो सबसे सम्मान पाता है, उसको हर जगह सम्मान मिलता है। त्याग का भी अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है, सम्मान। तो संतुष्टता का आधार है हमारी त्याग वृत्ति, और ये त्याग किससे होगा, त्यागी कौन बनेगा, सब त्याग कौन कर सकेगा? जो वैराग्य हो जाएगा, जिसको वैराग्य आ जाता है, वैराग्य आ गया तो उसे त्याग हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दिया, सब वैराग्य आया। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आया था, बहुत बड़ी पोस्ट पर जो व्यक्ति था, पति पत्नी थे, एक बच्ची थी उनकी छोटी, तो पता नहीं कहीं प्रवचन उन्होंने सुना, जैन धर्म के थे वो, कहीं प्रवचन इतना उनको दिल में लग गया और बस उसी दिन से उनके अंदर वैराग्य आ गया। इतना धन उनके पास, इतनी संपत्ति उनके पास, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, दोनों पति पत्नी ने संकल्प कर लिया कि हमको वैराग्य लेना है। बच्चे का प्रश्न आया, काफी कसम कस के बाद बहुत लोगों ने पहले उनको समझाया, आप वैराग्य लेना, पहले बच्ची थोड़ी बड़ी तो हो जाए, बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, 2 साल की ऐसे कुछ होगी, बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए फिर आप लोग वैराग्य लेना। बोले नहीं, बस हमको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब छोड़ने की इच्छा हो रही है, बस एक प्रभु से ऐसी प्रीत लग गई है, प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको। जब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा है, तो हम कैसे सब ये काम संभालेंगे। तो पति का तो फिर वैराग हो गया, फोटो भी आया था उसकी वैराग वाली ड्रेस का, जो ड्रेस पहनी थी उन्होंने जब वो वैराग लेते हैं, तो वो पत्नी को थोड़ा रोक दिया था, उसके लिए कुछ कोर्ट डिसीजन नहीं कर पा रही थी कि बच्ची है। अब जो भी बात हुई, कुछ दिन के बाद में, 5-7 दिन के बाद में भी पत्नी को भी कोर्ट ने छुट्टी दे दी कि हाँ ठीक है, वो भी वैराग ले सकती है। तो नाना नानी बच्ची की जो थे उन्होंने कहा हम इसको पालेंगे, उसने भी वैराग। तो देखो, सब बातों का त्याग, धन संपत्ति मान शान सुख सुविधाएं, ये सबका त्याग किससे होगा, कौन कर सकेगा, जिसके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया है। अब ये दुनिया जाने वाली है, ये दुनिया कैसी हो गई है, जीने लायक नहीं रही, रहने लायक नहीं रही है, इंसान कैसे हो गए, कितने सुंदर इंसान इस दुनिया में रहते थे, हमारे भारत भूमि पर ही रहते थे, तो सारी वो बातों से बाबा कहते हैं वैराग हो जाता है, पुरानी दुनिया अच्छी नहीं लगती है, ये भौतिक साधन, ये भौतिक सुख सुविधाएं, इनसे मन उठ जाता है, उपराम हो जाता है, तो सब कुछ त्याग हो जाता है। इसलिए त्याग वृत्ति का, संतुष्टता का आधा त्याग है, और त्याग का आधा वैराग वृत्ति है। बाबा ने तो हम बच्चों को वैराग की बहुत सारी बातें बताई है, बच्चे ऐसा ऐसा विनाश होगा, थर्ड वर्ल्ड वार का ऐसा रूप होगा, ऐसी भयानक स्थिति आएगी, ऐसी परिस्थितियां बनेगी, बच्चे उस समय जिसकी वैराग वृत्ति स्थिति पहले से ही बन गई है, त्याग वृत्ति योग बल उसके अंदर बहुत भरा हुआ है, ऐसे में भी उसकी स्थिति हिलेगी नहीं, उस समय भी उसकी स्थिति एक रस ही रहेगी, पर उसके लिए अभी से पुरुषार्थ चाहिए, अभी से चाहिए ऐसा पुरुषार्थ। बाबा तो आए दिन ऐसी बातें हमें बार बार सुनाते, एक बार ही नहीं सुनाई, ऐसी बातों को कितनी बार रिपीट होती है, क्योंकि पुरानी बात को बच्चे भूल गए तो फिर उनको याद आ जाए, से बच्चों को पुरानी दुनिया से उपराम हो जाना चाहिए, वैराग आ जाना चाहिए, एक बाबा के सिवाय कुछ भी, और बाबा की सेवा के सिवाय कुछ भी अच्छा ना लगे, और यही स्थिति हमको अंत में ऐसे चारों तरफ के माहौल में संपूर्ण बनाएगी, फरिश्ता बनाएगी, उड़ के हम ऊपर चले जाएंगे। दुनिया तो राख होनी ही है, लेकिन हम जो अंदर से राख होते हैं, सब कुछ हमने भस्म कर दिया, मेरा मेरा तो पहले ही भस्म किया, ये मेरा मेरा सब कुछ भस्म, ये सब कुछ भस्म करना है हमें, और यही भस्मी कहते महाकाल की भस्मी बन जाती है, उसी से श्रृंगार होता उसका, महाकालेश्वर ना उज्जैन में, ये जो मेरे मेरे को हमने भस्म किया, अपने पुराने संस्कारों को भस्म किया, सब कुछ पुराना भस्म किया, वो जो भस्मी बनी वही हमारे शिव बाबा का श्रृंगार बन जाती है। ऐसे बच्चों की भस्मी से भगवान का श्रृंगार होता है। श्री बाबा कहते बच्चे कौन है, भगवान के घर का श्रृंगार है। ये वैराग्य वृत्ति के साथ साथ एक रस अवस्था उनकी ही रह सकती है, अचल अडोल, जिनमें क्षमा करने का गुण होता है, क्षमाशील होते हैं। किसी ने चलो आपके साथ कुछ किया और आपने उसको क्षमा नहीं किया, चलो कोई तो क्षमा मांगते हैं तो भी नहीं करते हैं, बाबा के तो मांगे नहीं तो भी क्षमा कर दो, भूल जाओ उसने कुछ किया मेरे साथ, नहीं तो उसकी वही एक्टिविटी आपको बार बार याद आएगी, योग में ही याद आएगी और स्थिति कहां हमारी अचल अडोल रहेगी। एक दस देखो उसने मेरा अपमान कर दिया, 10 लोगों के सामने मुझे ऐसा बोल दिया, बोला आप योगी हो, अच्छे हो, सहयोगी हो, सब हो, क्षमा करो, चलो बात है, कोई बात नहीं, उसके बाद उसके पास में, मैंने तो उसकी बात जगह अपने ऊपर लगाई नहीं है। जो करेगा सो पाएगा, ये एक कर्म सिद्धांत है। और यदि मैंने संकल्प चले या मैंने भी उसको वैसा जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कहा मैंने 10 उसको मैंने भी जवाब, तो हिसाब किताब वहीं बराबर हो गया। और कुछ नहीं आप शांति में रहे और अंदर से जैसा क्षमा कर दे और आपने अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ी, बाबा कई बार मुरली में नहीं कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले की मुरली में कोई कितना भी आपको गाली भी दे लेकिन फिर भी आप शांत ही रहो, अभी कुछ दिन पहले की मुरली, उसके ऊपर फूल चढ़ाओ, ये था ना शब्द, यही था ना लाइन मुरली में, ये स्थिति है, हमने उसको क्षमा कर दिया। संतों का स्वभाव तो होता ही क्षमाशील, हम तो वैरागी हैं ही, राजयोगी हैं ही, तो अपनी स्थिति को यदि सदैव बना के रखना तो ये एक गुण धारण करके रखो, इससे क्या होगा आप कई अवगुणों से बच जाओगे, नहीं तो वो उथल पुथल होगी अंदर में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने ऐसा किया अभी बस उसके लिए भी मैं ऐसा करूं वैसा करूं, बदले की भावना भी आई जाती है ना, क्योंकि उसने मेरे साथ किया, अब इसकी शिकायत मुझे करना ही है, इसको मुझे सजा दिलवानी ही है, बहुत सारी बातें आ जाती, हमारे कई गुण नष्ट हो जाते हैं, एक गुण को हमने धारण नहीं किया उसने कई गुण हमारे नष्ट कर दिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है बाबा भारती और डाकू खडक सिंह का, वो तो उन्होंने कहानी सुनी होगी, वो तो उन्होंने सुनी होगी, बाबा भारती के पास बहुत सुंदर घोड़ा था, बहुत स्वस्थ सुंदर और बहुत बुद्धिमान, तो डाकू खडक सिंह जो था, बाबा भारती तो संत थे, तो डाकू जो खडक सिंह था उसकी अंदर में बहुत दिनों से इच्छा थी ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, कैसे भी करके मैं हथिया लूं घोड़े को, अब कैसे करूं, तो उनको पता है कि बाबा भारती बहुत दयालु हैं, तो उसने एक अपाहिज का वेश धारण करके सड़क के किनारे बैठ गया, उसको पता यहां से बाबा भारती भी जाने वाले हैं, तो अपाहिज बन के बैठ गया और बाबा भारती से प्रार्थना की कि मुझे घोड़े पे बिठा लो, मैं चल नहीं सकता हूं। बाबा भारती तो दयालु थे, वो नीचे उतर गए, उसको बिठा लिया, बिठा करके चलने लगे और उसके तो अंदर से वो तो छल वाली बात थी ना, तो झटका देकर उसने घोड़े को लेके वो भाग गया, तो बाबा भारती पहचान गई ये डाकू खडक सिंह है, इसने छल से कपट से मेरी दया का फायदा उठाया। तो उसने कहा खडक सिंह जरा रुको, एक सेकंड रुको, मेरी एक बात सुन लो, बस एक बात मेरी सुन लो, रुका वो, बोले ये घटना का, ये घटना किसी को बताना नहीं, ये घटना का जिक्र किसी से करना नहीं, वरना लोग अपाहिजों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। बस इतना कहा और चला गया वो। वापिस लौट के बाबू भारती अपने कुटिया में आ गए और वो घोड़ा लेके चला गया। कोई मन में मलाल नहीं बाबा भारती को, कोई मन में दुख नहीं, कोई मन में अशांति नहीं। उसने धोखा दिया, धोखे देने वाले के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं कि मैं इसकी रिपोर्ट करूं कि लोगों का इकट्ठा करूं, उसको पकड़वाऊं, कोई भावना नहीं। कितनी ऊंची मानसिकता कि अपाहिजों की, गरीबों की हमेशा सेवा होती रहे, कोई उनके ऊपर अविश्वास न करे। ये घटना से लोग विश्वास ही, अच्छे जो असली अपाहिज है उस पर विश्वास नहीं करेंगे लोग। इतनी ऊंची मानसिकता, इसलिए उसको सीख दे दे कि ये घटना किसी को बताना मत। अब आप बाबा भारती आके अपने कुटिया में शांति से सुख चैन के नींद में सो गए, चैन के नींद में सो गए शांति से। और वो जो खड़क सिंह है, रात भर उसको नींद नहीं आई। रात भर उसके कानों में वो शब्द गूंजते रहे, ये घटना किसी को बताना मत, लोग अपाहिजों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे, भरोसा नहीं करेंगे उन पर। बस ये शब्द उसको, डाकू खड़क सिंह को रात भर सोने नहीं दिया। बेचैनी के नींद, देखो एक इतनी अच्छी चीज पाकर के भी रात भर करवट बदल रहा है, और एक इतनी अच्छी चीज खोकर के भी चैन की नींद सो रहा है। इसमें से दुखी कौन और सुखी कौन? क्योंकि जिसने क्षमा कर दिया, कोई उसके प्रति बदले की भावना नहीं, उसको सजा दिलाने की भावना नहीं, ये स्थिति को एक रस रखने वाली बात। बाबा भारती की अवस्था बिगड़ी क्या? लोगों को इकट्ठा करता वो, पुलिस के पास चलो, उसकी रिपोर्ट लिखवाओ, पुलिस पकड़ेगी उसको, जो भी हो, कुछ भावना नहीं आई। बाकी घटना का जिक्र किसी से मत कर, इसके लिए मना कर दिया। ऊंची मानसिकता। तो जब हमारे अंदर ये गुण रहता है, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कर दिया ना, कोई बात नहीं, कभी भी कोई बात नहीं, हो गई ना गलती, कोई बात नहीं, हमारे मन में आपके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, आप खुश रहो, अच्छे से पुरुषार्थ करो, अपना काम करो, ज्यादा सोचना मत, है ना। तो मैंने आपकी बातों को दिल से नहीं लगाया है, मेरी भावनाएं आपके प्रति खराब नहीं हुई है। बाबा कहते ही बच्चे रहम दिल बनो, क्योंकि बाप कौन है? हमारा बाप रहम दिल है, क्षमा का सागर है वो। तो ये जो गुण है, ये भी हमारी स्थिति को एक रस बनाने में बहुत मदद करता है। और उसके साथ में एक बात और है, जिसने समय की कीमत समझ ली है, समय का मूल्य जिसके पास में है कि मेरा अंतिम जीवन है, और अंतिम जीवन की भी ये गारंटी नहीं कि कितने साल का मेरी जीवन है, ये तो मेरा एक एक श्वास, एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है, और मुझे अपने इस जीवन का हर श्वास सफल करना है। मुझे एक एक श्वास बाबा की सेवा में सफल करना है, योग लगा के सफल करना है, अच्छे कर्म करके सफल करना है। बहुत सारी बाबा की सेवा भी बची है, ये गोल्डन चांस हमको सेवा का, और जीवन को 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ बनाने का यही तो एक समय मिलता है पूरे कल्प में। ये अनमोल घड़ियां हैं मेरे लिए, ये घड़ी किसी युग में मिलने वाली नहीं है। हम सोचते अगले जन्म में कुछ कर लेंगे, उसके अगले किसी युग में कर लेंगे, नहीं। और इस संगम युग की एक एक घड़ी तो वैल्यूबल है ही, और उसके साथ साथ में मेरी स्थिति भी बहुत वैल्यूबल है। किसी भी यदि मेरी अपनी अवस्था 10 मिनट के लिए भी खराब करी, तो वो 10 मिनट मेरा इतना सुंदर जीवन की जो वैल्यूबल घड़ियां बर्बाद हो गई, स्थिति भी बिगड़ी, समय भी मेरा बेकार गया, इतना समय मेरा कट हो गया सफल करने में। समय को सफल करना है ना, तो इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि समय मूल्यवान है, और जो समय आज हमारे सामने है, हमारे पास में है, कल का भी भरोसा नहीं है, उसको अच्छी तरह से सफल करना है। एक व्यक्ति ने बहुत जीवन भर मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक करके 3 करोड़ सोने के सिक्के जमा कर लिए। अब उसने सोचा कि अब मैंने बहुत इकट्ठा कर लिया है, इतनी मेहनत, मैंने कुछ भी जीवन में न सत्संग किया, न कोई भजन किया, न भक्ति करी, कुछ भी नहीं किया, और मैंने अपने भी इंजॉय नहीं किया, इतना बिजी रहता था धन कमाने में। अब तो जो मैं थोड़े समय तक मैंने बहुत कमा लिया है, अब मैं जो अपने जीवन का जो समय है उसको मौज मस्ती बहुत इंजॉय करूं, मैं बहुत खाऊं पीऊं मौज मस्ती इसमें अब मैं गुजारूं, क्योंकि मैंने जीवन अभी कुछ किया नहीं, अब तो धन कमा लिया है। जैसे सोच ही रहा था कि अब मैं खाना पीना मौज मस्ती करना, बस मुझे यही करना है, इतने में मौत उसके सामने आके खड़ी हो गई। बोले आपका समय पूरा हो गया, चलो। बोले हैं, मैं तो सोच रहा है कि अब मैं इतना मैंने मेहनत से कमाया है, अभी एक मेरे को इसका उपयोग तो करने दो, मैंने दिन रात एक करके ही पैसा कमाया, इसका उपयोग तो मैंने कुछ भी नहीं किया, न इंजॉय किया, न मैंने मौज मस्ती की, न मैंने सुख लिया। बोले नहीं, आपका समय पूरा हो गया, चलो अब चलना ही है। जब उसने देखा कि अरे भाई, ये तो मौत मुझे ले जाने के लिए आ ही गई है, तो उसको कहा कि अच्छा भाई, ऐसा करो, मैं जो मैंने कमाया है ना, उसमें से 1 करोड़ सोने के सिक्के मैं आपको देने को तैयार हूं, मुझे 1 साल का समय दे दो, 1 साल का समय, 1 करोड़ सोने के सिक्के मेरे से ले लो आप। उसने कहा नहीं, समय हो गया, आपको चलना ही है। उसने सोचा अरे भाई, ये तो 1 साल देने को तैयार ही नहीं हो रही मौत तो, अच्छा भाई 1 महीने का समय मुझे दे दो, 2 करोड़ ले लो आप, 2 करोड़ ले लो, 1 महीने का समय तो मुझे दो। मृत्यु ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लेने ही आई हूं, मुझे लेके ही जाना तुमको। उसको आश्चर्य लगा कि वे 2 करोड़ सोने के सिक्के में भी मुझे 1 महीने का समय नहीं दे रही है मृत्यु। अच्छा भाई, 1 सप्ताह का समय तो मुझे दे दो। नहीं, 1 सप्ताह 1 घंटे का समय वो भी देने को तैयार नहीं। 3 करोड़ ले लो तुम मेरे से, 1 घंटा ही चलो दे दो, मैं सबको बांट दूं, सबको जो कुछ कहना है वो कर लूं, मैं मिल लूं जुलूं सबसे, 1 घंटे का समय, 3 करोड़ ले लो आप। मृत्यु ने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई ठीक है, वो मृत्यु मान ही नहीं रही है, 1 घंटे का भी समय मुझे नहीं दे रही है, अच्छा मुझे 2 लाइन लिखने का समय तो दे दो। बोला हाँ, वो समय तुमको मिल जाएगा, 2 लाइन लिखने का समय। 2 लाइन उसने लिखी, समय बहुत मूल्यवान है बाबा भी, समय प्रति समय, समय मूल्यवान है, समय बहुत कम बचा है, समय समीपता का आ रहा है, हम बच्चों को इशारे देते ही रहते हैं, तो हम बच्चों को भी इस बात पर बहुत गौर करना है। श्वास का कोई भरोसा नहीं, आए दिन आप ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं, 5 मिनट में सब खेल खत्म, 5 मिनट पहले अच्छी बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, विश्वास ही नहीं होता कि एकदम चला जाएगा, 10 मिनट में आधे घंटे में चला गया, उसने खुद ने भी नहीं सोचा था कि मेरी आयु अभी आधा घंटा की ही है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम श्वास समझ करके चलना है, पता नहीं कौन सी घड़ी मेरी अंतिम आ जाए, और हमें एक एक सेकंड सफल करना है, कोई भी सेकंड ऐसी बात ना हो जाए जो मेरी स्थिति को खराब कर दे, बिगाड़ दे, और स्थिति बिगड़ती उस समय हम भगवान के दिल से भी उतर जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसको हम ध्यान पर रखेंगे, अटेंशन देंगे, मैं समझती हूँ प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे, अवस्था एक रस हो ही जाएगी। और बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं, बाबा को हम बच्चों से यही आशा है, तो बाबा की ये आशा हम सभी को पूर्ण करनी ही है। ओम शांति।